कल्पना कीजिए कि किसी इंसान की आंख में मोतियाबिंद है और वो प्राचीन काल के एक सर्जन के पास अपना ऑपरेशन करवाने जाता है,
जो कि अपने आप में बहुत डरावना विचार है।
बिल्कुल। और जैसे ही सर्जन करीब आता है, मरीज देखता है कि उस सर्जन की अपनी आंख में लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा घुसा हुआ है। ये सुनने में किसी अजीब और बेतुके कार्टून जैसा लगता है।
हाँ, एक डार्क कॉमेडी जैसा।
वही तो, लेकिन असल में ये एक बहुत ही खौफनाक मजाक था जिसे ईसा मसीह ने उस दौर के मेडिकल कानूनों और पाखंड पर व्यंग कसने के लिए इस्तेमाल किया था।
और ये व्यंग उस समय के लोगों को तुरंत समझ आ गया होगा। मतलब प्राचीन दुनिया में मेडिकल प्रैक्टिस कोई मजाक नहीं था, खासकर आंखों की सर्जरी। इसके नियम इतने सख्त थे कि ऐसा मजाक सुनकर लोग शायद हंसने के साथ साथ सिहर भी गए होंगे।
तो आइए इस गहरी चर्चा में हम इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम जिस विषय पे उतर रहे हैं वो ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों से भरा है। हमारे पास डॉक्टर क्रेग कीनर के मैथ्यू अध्याय 6 से 8 पर दिए गए लेक्चर 9 के नोट्स और रिसर्च हैं।
हाँ, और अक्सर जब हम प्राचीन धार्मिक लेखों की बात करते हैं तो लगता है कि हम किसी सूखी हुई किताब या सिर्फ अध्यात्म की बात कर रहे हो।
बिल्कुल, एकदम बोरिंग सा।
हाँ, लेकिन डॉक्टर कीनर का ये विश्लेषण हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम इन प्राचीन लेखों को, जैसे मशहूर द लॉर्ड्स प्रेयर या चमत्कारों के किस्सों को, उनके असली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखें।
यानी ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है?
बिल्कुल नहीं, ये प्राचीन भूमध्य सागरीय अर्थव्यवस्था, वहाँ के समाज और मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन है। जब हम समझते हैं कि उस दौर में लोग कैसे जीते थे, तो इन लेखों का मतलब पूरी तरह बदल जाता है।
तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं दुनिया की शायद सबसे मशहूर प्रार्थना से, द लॉर्ड्स प्रेयर। अब एक आम धारणा यह है कि ईसा मसीह ने ये प्रार्थना अचानक कहीं शून्य से रच दी थी,
जो कि सच नहीं है।
हाँ, ऐतिहासिक स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं, है ना?
बिल्कुल। देखिए, प्राचीन यहूदी संस्कृति में प्रार्थनाओं की एक बहुत गहरी परंपरा थी। द लॉर्ड्स प्रेयर की संरचना और इसके कई विषय उस समय की एक बहुत ही प्रचलित प्रार्थना से प्रेरित थे, जिसे कादिश कहा जाता था।
कादिश? तो क्या इसमें भी वही बातें थी?
हाँ, कादिश मुख्य रूप से ईश्वर के नाम की महानता और उसके राज्य के आने की बात करती थी। तो ईसा मसीह ने एक ऐसा ढांचा इस्तेमाल किया जिससे लोग पहले से ही सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे।
लेकिन अगर ढांचा पुराना था तो इसमें नया क्या था?
मैंने पढ़ा है कि इसमें ईश्वर को संबोधित करने का जो तरीका था वो उस समय के हिसाब से काफी अलग था। उन्होंने अब्बा शब्द का इस्तेमाल किया।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब मुझे हमेशा से यही लगता था कि अब्बा का मतलब सिर्फ छोटे बच्चों का तुतलाना है, जैसे आज हम डैडी या पापा कहते हैं।
ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ये सच है कि बच्चे इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन प्राचीन साहित्य बताता है कि बड़े लोग भी अपने पिता के लिए अब्बा कहते थे।
ओह, अच्छा, तो ये सिर्फ बच्चों की भाषा नहीं थी?
नहीं, इसमें एक बहुत ही खास बात थी। ये शब्द गहरे सम्मान और असीम आत्मीयता का एक अनूठा मिश्रण था।
अगर इसे हम उस दौर के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव लगता है। उस समय ईश्वर की छवि एक बेहद सख्त और दूर रहने वाले राजा की तरह होती थी,
जिसके सामने जाने से लोग कांपते थे।
वही तो, ऐसे में उस खौफनाक सत्ता को अचानक एक नजदीकी पिता कहना, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम था।
और इसी आत्मीयता के साथ इस प्रार्थना की संरचना में एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन भी है। अगर आप ध्यान दें तो प्रार्थना के पहले हिस्से में केवल यू यानी तुम्हारा याचिकाओं का जिक्र है,
जैसे तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए या तुम्हारा राज्य आए।
बिल्कुल। और फिर अचानक प्रार्थना का रुख इंसान की ओर मुड़ता है और वी यानी हमारा याचिकाएं शुरू होती हैं, हमारी रोज की रोटी हमें दे या हमारे कर्ज माफ कर।
हाँ, ये जो पहली याचिका है कि तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए, ये सुनने में बहुत ही आध्यात्मिक लगती है, लेकिन क्या इसका कोई जमीनी मतलब भी था?
इसका मतलब जमीन से बहुत गहराई से जुड़ा था। यहूदी नैतिकता में इसे कादिश हशेम कहा जाता था, जिसका सीधा अर्थ है ईश्वर के नाम को पवित्र करना,
यानी अपने कर्मों से ईश्वर का सम्मान बढ़ाना।
हाँ, क्योंकि प्राचीन यहूदी समाज एक ऑनर शेम कल्चर था, जहाँ सम्मान और बदनामी ही सब कुछ तय करती थी। वहाँ ये माना जाता था कि एक व्यक्ति के कर्म सीधे तौर पर उसके ईश्वर के सम्मान को प्रभावित करते हैं।
इस पर मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब बात याद आ रही है जो हमारे स्रोतों में थी। कुछ रब्बियों का यहाँ तक कहना था कि अगर किसी इंसान को कोई पाप करना ही पड़े तो वो भेष बदलकर किसी अनजान जगह चला जाए।
हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है।
मुझे भी लगा। क्या वे सच में लोगों को पाप करने के लिए छुपने की तरकीबें बता रहे थे?
नहीं नहीं, वे पाप को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। ये एक हाइपरबोल या अतिशोक्ति थी। रब्बियों का तर्क ये था कि अगर तुम इतने कमजोर हो कि पाप करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हो, तो कम से कम अपना चेहरा छिपा लो
ताकि कोई पहचाने ना।
हाँ, किसी अजनबी शहर में चले जाओ ताकि लोग ये ना कहे कि देखो यहूदी ईश्वर के मानने वाले कैसे होते हैं। यानी इंसान चाहे खुद बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके कारण ईश्वर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए।
बापरे, ये बहुत ही गहरी बात है। ये उस समय के लोगों पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव रहा होगा। लेकिन सम्मान की बात से आगे बढ़कर प्रार्थना अचानक बहुत ही बुनियादी जरूरतों पर आ जाती है, हमारी रोज की रोटी,
जो कि उस जमाने की सबसे बड़ी सच्चाई थी।
आज के जमाने में जब हम सुपरमार्केट से आराम से ब्रेड खरीद लेते हैं तो ये लाइन एक आध्यात्मिक रूपक जैसी लगती है।
लेकिन पहली सदी के समाज में ये कोई रूपक नहीं था, ये सचमुच जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। भूमध्य सागरीय दुनिया के लगभग 70 से 90% लोग गरीब किसान थे,
जो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर थे।
हाँ, वे निर्वाह खेती करते थे। एक खराब मौसम या बारिश का न होना उनके लिए मौत का फरमान हो सकता था। तो जब वो रोज की रोटी मांगते थे तो वो सचमुच उस दिन के खाने की बात कर रहे होते थे, ताकि उनके बच्चे भूख से ना मरें।
और यहीं पर रोज की रोटी का ये संघर्ष सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था और कर्ज से जुड़ जाता है, क्योंकि अगर फसल नहीं हुई तो बीज खरीदने के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता था।
और प्रार्थना का अगला हिस्सा भी यही है, हमारे कर्ज माफ कर।
इस हिस्से को समझने के लिए हमें उस समय के कर्ज के जाल को समझना होगा। मैंने पढ़ा था कि गैर यहूदी साहूकार कभी कभी 50% तक का भारी भरकम ताज वसूलते थे।
बिल्कुल, 50%। ये एक ऐसा जाल था जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव था। कई बार किसानों को अपनी जमीन गंवानी पड़ती थी या फिर खुद को गुलामी में बेचना पड़ता था।
लेकिन यहूदियों के अपने अलग कानून भी तो थे, है ना? तोरा में साफ लिखा था कि एक यहूदी दूसरे यहूदी से ब्याज नहीं ले सकता।
हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत ही दिलचस्प नियम था, सातवां साल, जिसे जुबली या कर्ज माफी का साल कहा जाता था।
हाँ, नियम ये था कि हर सातवें साल के अंत में सारे कर्ज शून्य कर दिए जाएंगे,
है ना?
बिल्कुल, ताकि कोई हमेशा के लिए गरीबी के जाल में ना फंसा रहे।
अब यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी आर्थिक खामी या कहें लूपहोल नजर आ रहा है। अगर मैं पहली सदी का साहूकार हूँ और मुझे पता है कि अगले साल सातवां साल है,
तो आप कर्ज क्यों देंगे?
वही तो, मैं किसी गरीब किसान को कर्ज क्यों दूंगा जब मुझे पता है पैसा वापस नहीं आएगा? इससे तो पूरा सिस्टम ही ठप हो जाना चाहिए।
और ठीक यही हुआ भी। साहूकारों ने छठे साल में कर्ज देना पूरी तरह से बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जिन किसानों को बुवाई के लिए पैसे की जरूरत थी, वे भूखे मरने लगे।
यानी जो नियम गरीबों को बचाने के लिए था, वही जानलेवा बन गया। ये चतुर कानूनी रास्ता निकाला, जिसे प्रोसब्यूल कहा जाता है।
ये प्रोसब्यूल कैसे काम करता था?
ये कानूनी लूप होल था। नियम था कि इंसान इंसान का कर्ज माफ करेगा, लेकिन क्या हो अगर कर्ज किसी इंसान ने नहीं बल्कि मंदिर ने दिया हो?
ओ, तो साहूकार अपना पैसा मंदिर को दे देते थे।
हाँ, प्रोसप्यूल के तहत साहूकार अपना पैसा कागजों पर मंदिर के खजाने में जमा कर देता था, फिर मंदिर वो पैसा किसान को कर्ज के रूप में देता था।
तो क्योंकि कर्ज धार्मिक संस्था से लिया गया है, सातवें साल की माफी का नियम लागू नहीं होता था।
बिल्कुल सही, उसे वो पैसा हर हाल में चुकाना होता था और अंत में पैसा साहूकार के पास पहुंच जाता था।
ये तो बिल्कुल आज की कॉर्पोरेट दुनिया के टैक्स बचाने वाले आधुनिक तरीकों जैसा है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके वकील कानूनों की बारीकियों का फायदा उठाते हैं।
नियम भी नहीं टूटा और काम भी हो गया। सही कहा आपने। हालांकि रब्बियों का तर्क था कि कम से कम इस तरीके से गरीब किसानों को वो पैसा तो मिल रहा था जिसकी उन्हें जिंदा रहने के लिए सख्त जरूरत थी।
और चूंकि हम नियमों के बदलने और लूपहोल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कैसे खुद वे प्राचीन लेख भी समय के साथ बदलते रहे, जिसे टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म कहा जाता है।
ये बहुत ही दिलचस्प विषय है।
हाँ, क्योंकि जिस लॉर्ड्स प्रेयर की हम बात कर रहे हैं, उसका वो मशहूर अंत जो अक्सर चर्चों में बोला जाता है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, वो ओरिजिनल टेक्स्ट में था ही नहीं।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जब विद्वान मैथ्यू की सबसे पुरानी पांडुलिपियों की जांच करते हैं, तो पाते हैं कि प्रार्थना बस बुराई से बचाओ पर खत्म हो जाती है।
तो ये महिमा मंडन वाली लाइन वहां पहुंची कैसे? क्या किसी ने जानबूझकर मूल लेखों के साथ छेड़छाड़ की?
नहीं, इसमें कोई साजिश नहीं थी। दरअसल प्रार्थनाओं के अंत में ईश्वर की स्तुति बोलने की एक पुरानी परंपरा थी।
अच्छा, तो आदत की वजह से।
हाँ, जब लोग चर्च में रोजाना इस प्रार्थना का उच्चारण करते थे तो वे आदत के अनुसार अंत में ये स्तुति जोड़ देते थे। फिर मध्य युग में जब शास्त्रियों ने इन ग्रंथों की नकल उतारना शुरू किया तो वे उस बोले जाने वाले अंत के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें लगा पिछली कॉपी बनाने वाले से गलती से ये लाइन छूट गई है,
तो उन्होंने उसे लिखित टेक्स्ट में शामिल कर दिया। ये तो बिल्कुल बचपन में खेले जाने वाले टेलीफोन के खेल जैसा है, जहाँ एक से दूसरे तक पहुँचते पहुँचते संदेश में कुछ नया जुड़ जाता है।
बिल्कुल वैसा ही।
लेकिन अगर ये टेलीफोन का खेल लिखित रूप में सदियों तक चला तो ये सवाल उठता है कि हम इन प्राचीन लेखों पर कितना भरोसा कर सकते हैं।
ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म का विज्ञान बताता है कि अगर हम इतिहास के अन्य दस्तावेजों से तुलना करें तो नया नियम प्राचीन काल का सबसे बेहतरीन संरक्षित लेख है।
हम इसके कुछ आंकड़े थे ना हमारे नोट्स में।
हाँ, उदाहरण के लिए जूलियस सीजर की मशहूर किताब गैलिक वॉर की केवल 30 कॉपियां ही आज मौजूद हैं। होमर की इलियट की केवल 700 कॉपियां बची हैं, लेकिन नए नियम की हजारों शुरुआती कॉपियां दुनिया भर में मौजूद हैं।
और ये कॉपियां किसी आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपी थी। मध्य युग में भिक्षुओं ने ठंडे और अंधेरे कमरों में मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर सालों तक इन्हें अपने हाथों से कॉपी किया,
वो भी भारी सामाजिक और राजनीतिक उत्पीड़न के बीच। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है।
और यही पांडुलिपियां हमें ये भी बताती हैं कि ईसा मसीह ने भौतिकवाद और व्यक्तिगत संपत्ति को किस नजरिए से देखा था।
अब जब हमने अर्थव्यवस्था की बात की है तो उस समय संपत्ति को लेकर अलग अलग विचार क्या थे?
उस दौर में एसींस नाम का एक बेहद कट्टर यहूदी समुदाय था जो रेगिस्तान में रहता था। उन्होंने निजी संपत्ति को पूरी तरह से त्याग दिया था। उनका मानना था कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, लेकिन ईसा मसीह का तरीका एसेंस से बिल्कुल अलग था। उन्होंने हर किसी को अपनी संपत्ति छोड़कर रेगिस्तान में जाने के लिए नहीं कहा, इसके बजाय उन्होंने इंसान के नजरिए को निशाना बनाया।
और यहीं पर वो सिंगल आय और ईवल आय का अजीब सा मुहावरा आता है।
हाँ, जब मैंने पहली बार ईवल आय या बुरी नजर के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये किसी तरह के काले जादू या श्राप की बात हो रही है।
ये भ्रम होना स्वाभाविक है, लेकिन प्राचीन यहूदी मुहावरों में इसका अर्थ काले जादू से बिल्कुल नहीं जुड़ा था। सिंगल आय का मतलब था एक उदार और साफ नजर वाला व्यक्ति जो मदद के लिए तैयार रहता है।
और ईविल आय का मतलब?
इसका मतलब था एक कंजूस, ईर्ष्यालु और लालची व्यक्ति। ईसा मसीह कह रहे थे कि अगर इंसान की नजर ही लालची है तो उसका पूरा जीवन अंधकार में डूब जाएगा।
तो अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझूं तो ईविल आय वाला इंसान वो नहीं है जो चौराहे पर तंत्र मंत्र कर रहा है, बल्कि यह उस करोड़पति की तरह है जो अपना सारा पैसा मुट्ठी में भींच कर रखता है और जिसके दिल में दूसरों के लिए दया नहीं है।
एकदम सही। और इसी लालच को समझाने के लिए वे मैमन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उस समय मैमन सिर्फ पैसे का नाम नहीं था, बल्कि यह पैसे का एक मानवीकरण था।
मानो पैसा कोई जीवित देवता हो जो आपकी पूजा मांगता है।
हाँ, उनका संदेश बहुत स्पष्ट था कि कोई भी इंसान एक ही समय में ईश्वर और मैमन दोनों का गुलाम नहीं हो सकता।
और पैसे के पीछे भागने से एक और चीज जन्म लेती है, चिंता। स्रोत बताते हैं कि ईसा मसीह ने कहा कि चिंता करने से इंसान अपनी उम्र में एक क्यूबिट यानी लंबाई की एक प्राचीन इकाई भी नहीं जोड़ सकता।
और यह बात उस दौर की सेरेक नाम की प्राचीन यहूदी शिक्षाओं से काफी मेल खाती है, जहां बताया गया था कि चिंता वास्तव में इंसान को कुछ नहीं देती, बल्कि वह उसकी उम्र को अंदर ही अंदर खा जाती है।
चिंता इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है, और जब इंसान सिर्फ अपनी संपत्ति की चिंता में डूबा रहता है तो वो दूसरों के प्रति कठोर और पाखंडी हो जाता है।
बिल्कुल।
और ये सवाल कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें सीधे उस खौफनाक व्यंग्य की ओर ले जाता है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, आंख के सर्जन वाला मजाक।
हाँ, दूसरों की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो।
जब हम इसे सिर्फ एक कहावत की तरह सुनते हैं तो बहुत आम लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो मेडिकल इतिहास आपने बताया वो इसे एक डार्क कॉमेडी बना देता है।
देखिए, इस व्यंग्य की जड़ें प्राचीन मेडिकल कानूनों में हैं, जैसे कि हम्मुराबी की संहिता। उस समय अगर कोई सर्जन किसी की आंख का ऑपरेशन कर रहा है और उसकी गलती से मरीज की आंख खराब हो जाती है तो कानून बहुत बेरहम था।
सजा क्या मिलती थी?
सजा के तौर पर उस सुरजन की अपनी आंख निकाल ली जाती थी या उसका हाथ काट दिया जाता था।
बाप रे, ऐसे कानूनों के डर से तो कोई भी आंख का डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा।
ठीक, यही बात थी। तो अब कल्पना कीजिए एक ऐसे सर्जन की जिसकी अपनी आंख में एक बहुत बड़ा लट्ठा घुसा हुआ है। वो खुद अंधा है और खतरे में है, लेकिन वो पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरे व्यक्ति की आंख का एक छोटा सा तिनका निकालने आ रहा है।
ये तो जानलेवा बेवकूफी है। ईसा मसीह उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे जो अपनी बड़ी बड़ी कमियों को तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
ये पाखंड पर एक बहुत ही करारा प्रहार है, और दूसरों को जज न करने के लिए उन्होंने वो नियम दिया जिसे हम आज द गोल्डन रूल कहते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें।
यहाँ हमारे रिसर्च नोट्स में रब्बी हिलेल और शमाई की एक बहुत ही मजेदार कहानी दी गई है जो इसी गोल्डन रूल को दर्शाती है।
हाँ, ये कहानी पहली सदी के विचारकों के बीच इस रूल की मौजूदगी को बहुत अच्छे से दिखाती है।
तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गैर यहूदी आदमी रब्बी शमाई के पास आता है। शमाई काफी सख्त मिजाज के थे। वो आदमी शर्त रखता है कि अगर रब्बी उसे एक पैर पर खड़े होकर पूरा तोरा सिखा दें तो वो यहूदी धर्म अपना लेगा।
शमाई को ये धर्म का अपमान लगता है और वो उसे डंडे से मारकर भगा देते हैं।
हाँ, फिर वो आदमी रब्बी हलील के पास जाता है जो शांत स्वभाव के थे। वे उसे एक पैर पर खड़े होकर जवाब देते हैं, जो तुम्हें अपने लिए बुरा लगता है वो दूसरों के साथ मत करो, यही पूरा तोरा है, बाकी सब सिर्फ इसकी व्याख्या है।
हिलाल का ये जवाब ऐतिहासिक रूप से बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि पूरे धार्मिक कानूनों का जो अंतिम निचोड़ है वो मानवीय व्यवहार है।
ये तो मुझे कॉर्पोरेट दुनिया के एलिवेटर पिच का प्राचीन रूप लगता है। जैसे अगर आप अपना आइडिया एक मिनट में लिफ्ट में नहीं समझा सकते तो आइडिया साफ नहीं है।
हाँ, उन्होंने पूरे तोरा का एलिवेटर पिच दे दिया।
लेकिन अच्छी बातें करना या बेहतरीन एलिवेटर पिच देना एक बात है, क्या ईसा मसीह के पास इन बातों को लागू करने का अधिकार यानी अथॉरिटी थी?
यही वो सवाल था जिसने उस समय के समाज को हिला कर रख दिया था। लोगों ने महसूस किया कि उनकी शिक्षाओं में तोरा के स्तर का अधिकार था।
लेकिन सिर्फ शब्दों का अधिकार काफी नहीं था ना?
नहीं, इसके तुरंत बाद मैथ्यू के अध्याय 8 और 9 में 10 अलग अलग चमत्कारों का जिक्र आता है। विद्वान मानते हैं कि ये 10 चमत्कार कोई संयोग नहीं थे, बल्कि इन्हें जानबूझकर मूसा के समय मिस्र में हुए 10 चमत्कारों के समानांतर रखा गया था,
ताकि ये साबित हो सके कि एक नया अधिकार सामने आ गया है।
और इन चमत्कारों में सबसे दिल दहला देने वाली कहानी है एक कोढ़ी की। जब हम इसे पढ़ते हैं तो लगता है ये सिर्फ एक बीमार इंसान को ठीक करने की बात है।
लेकिन लेविटिकस के सख्त कानूनों के अनुसार कोढ़ सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक सामाजिक मौत थी।
कोढ़ के मरीज को समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था ना? हाँ, वो अलगाव इतना भयानक था कि उस व्यक्ति को अपने कपड़े फाड़कर रखने होते थे, और अगर कोई अनजान व्यक्ति पास आए तो उसे खुद जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध, ताकि कोई उसे छू न ले।
उस इंसान की मनोवैज्ञानिक हालत के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सालों से उससे किसी ने प्यार से छुआ तक नहीं होगा।
बिल्कुल। तो जब वो कोढ़ी ईसा मसीह के पास आता है तो ईसा मसीह जो करते हैं वो कानून के नजरिए से एक अपराध था। वे दूर से मंत्र नहीं पढ़ते, वे आगे बढ़कर उस अछूत इंसान को छू लेते हैं।
जबकि अशुद्ध को छूने का मतलब था खुद को अशुद्ध कर लेना।
हाँ, इस कृत्य के जरिए उन्होंने सिर्फ उसके शरीर का इलाज नहीं किया, उन्होंने उसकी सामाजिक अछूतपन को खुद पर ले लिया। ये एक टूट चुके इंसान को वापस अपनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली कदम था।
ये दृश्य इतिहास के सबसे ताकतवर क्षणों में से एक है। और जब हम चमत्कारों की बात करते हैं तो डॉक्टर कीनर ने सिर्फ प्राचीन किताबों तक खुद को सीमित नहीं रखा है, उन्होंने अपनी एक आधुनिक अनुभव भी साझा किया।
हाँ, वो घटना बहुत दिलचस्प है।
उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने एक महिला के खराब घुटने के लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गया। फिर वो महिला वापस आई क्योंकि उसे फेफड़ों के कैंसर का शक था। डॉक्टर कीनर ने प्रार्थना की और जांच में पता चला कि कैंसर का कोई नामोनिशान नहीं है।
इस घटना का उल्लेख डॉक्टर कीनर ने इसलिए किया है ताकि हम समझें कि प्राचीन दुनिया के लोग चमत्कारों को सिर्फ किसी प्रतीक या रूपक के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए ये वास्तविक घटनाएं थीं जो प्राकृतिक नियमों को तोड़ देती थीं।
तो आज हमने इस चर्चा में जो सफर तय किया है वो वाकई आंखें खोलने वाला है। हमने सिर्फ प्राचीन पन्नों को नहीं पलटा, हमने उस दुनिया के किसानों की बेबसी को देखा जो बारिश पर निर्भर थे।
हमने 50% ब्याज वसूलने वाले साहूकारों का लालच देखा और प्रॉसबुल के नियम की चालाकी को समझा।
हमने एक पैर पर खड़े होकर ज्ञान देने वाले रब्बियों, प्राचीन नेत्र सर्जनों के खौफ और मध्ययुग के उन अंधेरे कमरों को महसूस किया जहां भिक्षु नकल करते थे, और सबसे बढ़कर एक ऐसे गुरु को देखा जिसने अछूत को गले लगाकर इतिहास बदल दिया।
ये सब सिखाता है कि इन प्राचीन लेखों के अंदर एक जीती जागती क्रांति छिपी है, ये कोई मृत शब्द नहीं है।
और इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार जो शायद लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। हमने देखा कि रोज की रोटी मांगना या कर्ज माफ करना कोई आध्यात्मिक कविता नहीं थी, ये जिंदा रहने के, अर्थव्यवस्था चलाने के और समाज बनाने के ठोस नियम थे।
बिल्कुल, एकदम व्यवहारिक नियम।
तो सवाल ये है, क्या आज के इस आधुनिक दौर में हम इन प्राचीन लेखों को सिर्फ एक आध्यात्मिक पाठ के बॉक्स में बंद करके उनके असली सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? क्या इन व्यवहारिक नियमों को महज एक रूपक मानकर हमने इनकी असल ताकत को खत्म तो नहीं कर दिया है? इस बात पर विचार करना जरूरी है। इस गहरी चर्चा के आज के सफर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी अनकही गहराइयों के साथ।